ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल श्लोक 31 हुआ था ना, कल 31 हुआ था राइट, कल 31 हुआ था, आज 32 होना चाहिए था, बट एनीवे चलेगा, कोई ज्यादा परपोट नहीं है। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण 8वां स्कंद अध्याय 15 और श्लोक संख्या 34। इस अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। तम विश्वजैनम शिष्यम भृगव शिष्यवत्सल सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। तम विश्वजैनम शिष्यम भृगव शिष्यवत्सला सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। तम विश्वजैनम शिष्य भृगव शिष्यवत्सल सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। तम विश्वजैनम शिष्य भृगव शिष्यवत्सल सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अजाजयान। माताजी तम बलि महाराज को विश्व जैनम समग्र विश्व के विजेता को शिष्यम शिष्य होने के कारण भृगवः भृगुवंशज यथा शुक्राचार्य के शिष्य वत्सलः शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होकर सतेना 100 के द्वारा हयमेधाना अश्वमेध यज्ञों के अनुव्रतम ब्राह्मणों के आदेश का पालन करते हुए आजायरन संपन्न किया। अनुवाद तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। तात्पर्य महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर का राजा बना था। यहां पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराज बलि इंद्रासन पर विराजमान हैं, तथापि वे तब तक उस पर स्थित नहीं रह सकेंगे जब तक से वे यज्ञ न कर लें। अतएव उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने विश्व अश्वमेध यज्ञ करें। अयाजयन शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषुपुरुषम् भुक्ते गुणां षोडशषोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ठं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग प्रारंभ हुआ है इससे भी समुद्र मंथन के बाद, जब भगवान मोहिनी अवतार ग्रहण कर करके और देवताओं को समुद्र ममृत बांट दिए, तो उस समय एक महान विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर। और उस युद्ध का नाम था देवासुर संग्राम, नॉट वर्ल्ड वॉर टू, देवासुर संग्राम। उस देवासुर संग्राम में बलि महाराज, जो कि असुरों के सेनानायक थे, राजा थे, वे परास्त ही नहीं किए गए बल्कि जान से जान गंवा डाले। लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य थे, जिन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त थी, और वे संजीवनी विद्या से बलि महाराज को जीवित कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ कराया, विश्वजीत यज्ञ, जिस यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ से उन्हें बहुत वस्तुएं प्राप्त हुई, रस प्राप्त हुआ, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, कवच प्राप्त हुआ जो कभी भेदित नहीं हो सकता था, और अंत में उनके दादा प्रहलाद जी उनको एक बहुत सुंदर माला अर्पित किए जो कभी मुरझाता नहीं था। इस प्रकार से सज्जित होकर के बलि महाराज आक्रमण किए इंद्र पर। इंद्र तो निश्चिंत थे एक तरह से कि अब तो बलि खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ हो गया था। इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य में जब हमें सफलता प्राप्त होती है तो सोना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ समय तक देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। सफलता प्राप्त हुई है वो हाफ सफलता है, पूरा सफलता उसका परिणाम देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। महाभारत युद्ध के में भी ऐसा देखा गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका, सब लोग निश्चिंत सोए हुए थे और अस्थामा आकर के अपना काम कर चल गया, तो अंतिम दिन बड़ा खतरनाक होता है। इंद्र निश्चिंत थे, वो समझे भी नहीं कि बलि कुछ कर सकते हैं, लेकिन बलि ऐसा काम किए कि इंद्र का होश हवास उड़ गया। जब बलि आक्रमण किए तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रलयकालीन अग्नि आ रही हो, और बलि के आगमन को देख करके ही इंद्र भयभीत हो गए, वो डर गए और वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनके समझ से ये परे की बात थी कि अभी अभी तो बलि परास्त हुआ था, सब भाग गए थे, अभी ये कैसे हो सकता है। तो चूंकि इंद्र सत्गुण प्रधान हैं, तो वे अपने गुरु बृहस्पति के शरण में गए और बृहस्पति जी से प्रश्न पूछे। ब्रूही कारणम एतस्य दुर्दवस्तस्य मद्रिपो ओज सहो बलम तेजो यत एतत् समुद्धमम्। ऐसा ये प्रयास कैसे कर सकता है, ब्रूही कारणम एतस्य। हे गुरुदेव, कृपा करके इसका कारण बताइए। किसका? मद्रिपो, मेरे शत्रु का। किसमें इस प्रकार का पराक्रम, शक्ति, बल, तेज, ये सब अनायास ही कैसे आ गए, कैसे प्राप्त हो गए? तब बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं, वे बतलाए। एक राजा को समुचित रूप से राज्य करने के लिए छह वस्तुओं की बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें छह इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन को भी कहा गया है। कार्यरत रखने के लिए शरीर को ये पांच इंद्रियां ही उपयुक्त नहीं है, मन होना जरूरी है। भगवान गीता में कहते हैं, मनोसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति यान्ति कर्षति। वैसे ही राजा का भी जीवन संघर्षपूर्ण होता है। उस संघर्षपूर्ण राजा के लिए छह सहायक होते हैं, छह लोग होना चाहिए, जिसमें से प्रथम जो हैं वह हैं गुरु। राजा को एक गुरु होना चाहिए, राजा के पास मंत्री होने चाहिए, राजा के पास सैनिक होने चाहिए, राजा के पास राजकोष होना चाहिए, राजा के पास क्षेत्र होना चाहिए और राजा के पास प्रजा होनी चाहिए। क्लियर? एक राजा को छह वस्तुओं की आवश्यकता होती है समुचित रूप से राज्य करने के लिए। राजा के लिए राजगुरु हो, राजा के लिए राजमंत्री हो जो उसको एडवाइस करे, राजा के लिए सैनिक हो, राजा के लिए राज्य हो, धन हो, राजा के लिए प्रजा हो, और क्या, क्षेत्र, एरिया, टेरिटरी, ये छह चीज जरूरी है। इसका वर्णन भागवत महापुराण के छठम स्कंद में किया गया है। यह महाराज चित्रकेतु का पुत्र मर गया था, उस समय महाराज चित्रकेतु लेमेंट कर रहे थे, शोक मग्न थे। उस समय जब पर्वत मुनि आए नारद जी के साथ में, तो वहां पर पर्वत मुनि ये प्रश्न किए थे कि आपके ये छह लोग कार्यरत तो है ना, ये छह होना जरूरी है। तो इंद्र भी स्वर्ग के राजा हैं और उनके पास गुरु हैं। दुख की बात है कि आजकल के राजा लोगों के पास गुरु नहीं है, शायद हो जाए अब लगता है। राजा के पास गुरु होना जरूरी है, पहला चीज है गुरु। जितने भी राजा हुए हैं सबके पास राजगुरु थे, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो। और वैसा गुरु जो गुरु का काम करे, यानी अपना हित न देख करके पहले प्रजा का हित, ये सबके लिए जरूरी है, चाहे राजा हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई हो। सबसे पहले देखना चाहिए प्रजा का हित किस में है, उसके बाद राज्य का हित किस में है, और तीसरा आता है अपना हित किस में है। आजकल के ये पॉलिटिकल एरिना में देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा है। पॉलिटिशियन लोग पहले अपना पोस्ट देखना चाहते हैं कि हमारा सब ठीक है ना, जब समय बचेगा तो अपने पार्टी का हित देखेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, जो भी पार्टी हो, और जब थोड़ा बहुत समय बचेगा तब शायद प्रजा के विषय में सोचेंगे, है ना। ये नेगेटिव पिक्चर है, लेकिन शास्त्र इसके बिल्कुल विपरीत कहता है। शास्त्र कहता है कि पहले चाहिए प्रजा का देखभाल करना, उसके बाद पार्टी का देखभाल करो, और अंत में अपना देखभाल करो। यही विधि है, यही सात्विक विधि है या वैदिक संस्कृति है। बृहस्पति जी में वह बात देखने को मिलती है जहां कि शुक्राचार्य में वह बात नहीं मिलती है। आचार्य है शुक्राचार्य, ऑर्डिनरी नहीं है, संजीवनी विद्या जानते थे, लेकिन अंत समय में वे फेल हो गए, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर चूंकि बृहस्पति जी का आया हुआ है, बृहस्पति जी निष्पक्ष भाव से कहने जा रहे हैं, कहते हैं जनामि मघवन शत्रो उन्नते अस्य कारणम। हे मघवन, हे इंद्र, अहम जनामि, मैं जानता हूं शत्रो उन्नति अस्य कारणम, तुम्हारे इन शत्रुओं के उन्नति का क्या कारण है मैं जानता हूं। तो गुरु वे होते हैं जो शिष्य के भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते हैं। शिष्य को शरणागत होना, शिष्य के लिए एक ही काम है, वह है शरणागति। शिष्य यदि शरणागत रहेगा, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शरण में, तो उस शिष्य का हमेशा कल्याण होगा। जैसे अर्जुन शरणागत हुए, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः, माम त्वाम प्रपन्नः, प्रपन्न होना, टोटली सरेंडर हो जाना। इसलिए कहा जाता है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, प्रपन्न, वही परंपरा है प्रपन्न। जो 100% सरेंडर हो जाएंगे तो वह गुरु उस शिष्य के आत्म कल्याण के विषय में सब कुछ बताएगा। कभी कभी देखा जाता है कि शिष्य क्वालिफाइड होता है लेकिन गुरु क्वालिफाइड नहीं होते हैं। कभी कभी देखा जाता है गुरु क्वालिफाइड होते हैं लेकिन शिष्य क्वालिफाइड नहीं होता है। लेकिन गुरु और शिष्य दोनों क्वालिफाइड हो तब अपने डेस्टिनेशन को दोनों प्राप्त करेंगे। एक बार एक भक्त श्री प्रभुपाद जी बिगिनिंग के दिनों में उनके पास एक अटैची हुआ करता था। तो एक भक्त था, सब लोग प्रभुपाद जी का महाप्रसाद चाहते थे, तो प्रभुपाद जी का जो अटैची जो था वो थोड़ा पुराना जैसा हो गया था। तो एक भक्त प्रभुपाद जी के लिए नया अटैची खरीद कर लाया और बड़ा उत्साहित था कि प्रभुपाद जी अपना अटैची तो हमको महाप्रसाद के रूप में देंगे। तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि हमको अटैची महाप्रसाद के रूप में प्रभुपाद जी देंगे। तो अटैची दिया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी अटैची देखे, सूटकेस देखे, प्रभुपाद जी बहुत खुश थे, कहे थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप लाए। प्रभुपाद ने यहां तक कहा कि ये सामान जो पुराने वाला है वो खाली करके इसमें रख दो। तो बड़ा खुश हो रहा था कि प्रभुपाद जी हमको देंगे अटैची। जब पूरा काम हो गया तब प्रभुपाद ने कहा थैंक यू वेरी मच, मतलब तुम जा सकते हो। तो बेचारा वो खड़ा था, देख रहा था कि प्रभुपाद जी कब देंगे हमको देंगे, सोच रहा था। तो प्रभुपाद बोले कि पुराना अटैची जो है, तो समझा कि हमको देंगे लगता है। प्रभुपाद ने कहा उसको बगल में रख दो, और कुछ सामान रखना है उसको वहां पर रख दो। अब बेचारा बड़ा दुखी हो गया कि उसी क्षेत्र की मिल जाएगा। जब दुखी हो गया बेचारा, मुंह लटका दिया जा रहा था, प्रभुपाद ने कहा रुको। प्रभुपाद ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा है, तुम पुराना वाला लेना चाहते हो, ठीक है तुम ले सकते हो। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि उसके मन में ऐसी भावना है, तो गुरु जानते हैं। इंद्र नहीं जानते थे, तो इंद्र अपना कर्तव्य निभाए, अपना काम किए, जाकर के अपने गुरु से पूछे। जब कुछ चीज नहीं जानकारी हो तो अपने मन से नहीं करना चाहिए। अपने मन से किया गया काम बड़ा खतरनाक होता है। केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अपने मन से हम काम करना शुरू करेंगे तो भगवान गीता में कहते हैं यह सौ शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सौ सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। सुख नहीं मिलेगा, जो प्रयास किए हैं वो भी किसी काम का नहीं, और अल्टीमेटली विल नॉट गो बैक होम बैक टू गॉड, भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए जो भी कार्य करें वो गुरु और गुरु के प्रतिनिधि के अध्यक्षता में कार्य करें। यदि समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए, लेकिन अपने मनमाना नहीं करना चाहिए। हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए मनमाना काम करते हैं। कल कोई बोल रहा था कि ब्रह्मचारी आश्रम बहुत आजकल शालिग्राम की पूजा हो रही है, हो रही है ना, वही बोल रहा है। क्या गुरुजी कहे हैं करने के लिए, अथॉरिटी कहा है? इंद्रिय तृप्ति है, निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम का। मेरा भी अनुभव है इसका। शुरू शुरू में अभी तो पैसा बहुत मंदिर उन दिन पैसा नहीं था, तो फल खाने का मन करता था, करें क्या, तो सोचे हम एक उसमें मूर्ति नहीं लेकिन फोटो रखते थे। उन दिनों ब्रह्मचारी आश्रम में फोटो भी अलाउ नहीं था, केवल चटाई अलाउ था, बस दो सेट कपड़ा, चटाई और एक नोटबुक, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। किताब भी हिंदी किताब कहां था, गीता का 6 चैप्टर तक था, और जितने किताब थे अभी जो अकाउंट ऑफिसर लाइब्रेरी था, आओ लाइब्रेरी में पढ़ो और नोट कर करके जाओ, और जो क्लास में हो नोट भाई बस। गिरिराज स्वामी और हम दोनों आदमी आया करते थे आश्रम में देखने के लिए, कोई भक्त अपने रूम में फोटो नहीं रखता था। तो ऐसा उस समय नियम था, तो मैंने सोचा कि हम भी कुछ फोटो रख लेंगे तो पूजा करेंगे। वो महाबुद्धि प्रभु, शायद इज महाबुद्धि कमिंग, ही वाज आवर वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं कहा कि मैं बहुत पहले से ही पूजा करता हूं, स्टूडेंट लाइफ से वृंदावन में पूजा किया, तो मैं राधा कृष्ण का ही पूजा करता हूं, और मुझे 2-4-5 रुपये चाहिए 2-4 केला खरीदने के लिए। महाबुद्धि ने कहा तुम किसने कहा है पूजा करने के लिए, किसने अथराइज किया? मुझे डांट खाना पड़ा। मैं कहा छोड़ो भाई, पूजा नहीं करूंगा, अभी हो गया। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए सब काम नहीं करना चाहिए, अथराइज होना चाहिए, ऑथोरिटेटिव होगा तब कोई ऑथोरिटी उसको ऑथराइज करेगा। तो कोई भी काम हो अपने मनमाना ढंग से करेंगे तो भगवान जो कहते हैं यह सब शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य, ये श्लोक लागू होता है। भगवद गीता बड़ा प्रैक्टिकल है, इसीलिए गीता में भगवान सलाह देते हैं तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर।
अपने मनमाना नहीं करना चाहिए,
कुछ ना समझ में आए जाकर पूछ लेना चाहिए। ये संसार बड़ा भयावह है,
माया कब प्रभाव डाल देगी पता नहीं चलेगा।
माया पूजा के रूप में आएगी, भक्ति के रूप में आएगी। माया बड़ी खतरनाक है, बहुरूपिया है माया, बहुरूप, एक रूप नहीं माया की है, अनेक रूप है। वो भक्ति बन करके भी आएगी, ब्रह्मचारियों के पास एक माता जी आ जाएगी, कहे आपका सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, भक्ति बन करके सोचता है कि अच्छा है। माया किसी रूप में आप जानते हो ना कहानी, वो एक महात्मा थे बेचारे, बड़ा अच्छा भजन करते थे, और चूहा परेशान करता था, उनका कोपिन खा जाता था। तो महात्मा ने सोचा कि भजन में बड़ा बाधा हो रहा है, तो चूहा का दवा बिल्ली है, तो बिल्ली एक पाल लिए चूहा के लिए, चूहा का दवा करने के लिए। अब बिल्ली को भूख लगा तो म्या म्या करते हुए महात्मा के पास पहुंच गई। अब महात्मा को एक भाई क्या, अब भजन करूं कि बिल्ली का पालन करूं, तो एक गाय रख लिए बिल्ली का देखभाल करने के लिए। अब गाय कौन देखभाल करेगा, तब जानते हो फिर क्या हुआ है? कोफिन का देखभाल करने के लिए घर संसार बसा दिए। तो माया किसी रूप में आ सकती है, और लिविंग एग्जाम्पल है भरत जी का, हरिण का बच्चा, बड़ा दया किए थे भरत जी, दया बस देखे कि हाय हाय कि हरिण का बच्चा, इसका क्या दोष है, इसकी मां थी, जब जन्म हुआ तभी इसकी मां का वध हो गया, मर गई इसकी मां, ये तो असहाय बच्चा है, मैं ही इसका सब कुछ हूं। तो कभी कभी कंपैशन के रूप में भी माया आता है, माया किसी रूप में आ सकती है, इसीलिए माया का नाम है बहुरूपिया। समझे पुरुष भूषण ना, नहीं समझ रहे हो, जाओगे तो समझोगे ना, सो कहां समझोगे। तो माया बहुरूपिया है, बहुरूपिया, बहुत रूप में आती है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो कोई हो। माया नहीं सोचती है कि सीनियर से अलग रहूंगी, उन पर तो बल्कि और अटैक करती है। जूनियर को तो फिर सोचती है कि कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, इस पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, सीनियर पर ज्यादा अटैक करती है। तो सबको अलर्ट रहना चाहिए, इसीलिए हमेशा साधु शास्त्र और गुरु के शरण में रहना चाहिए। शास्त्र हमारे लाभुक हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक है ना कहीं। हम लोगों को स्वयं को अपना इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट अपने करना पड़ेगा कि मेरा 24 आवर डे कैसे चल रहा है, मैं एंगेज हूं कि नहीं हूं, सेवा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। दूसरा कोई हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं हमको इंस्पेक्ट करेगा, हमको स्वयं इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्या मैं 8 घंटा सेवा करता हूं, क्या मैं जप कर रहा हूं, ये ठीक जप हो रहा है कि नहीं, क्या मैं प्रसाद खा रहा हूं, सही में प्रसाद खा रहा हूं, प्रसाद ऑफर हुआ कि नहीं। मैं क्लास दे रहा था कहां, तलासरी में, प्रसाद का बात चल रहा था। हम लोग जानते हैं माधवेंद्रपुरी कथा, माधवेंद्रपुरी की इच्छा हुई कि यदि हमको एक खीर मिल जाएगा तो मैं भी गोपाल जी के लिए ऐसा खीर बनाऊंगा। तब तक घंटी बज गया, तो उन्होंने क्या सोचा, अरे अभी तो भगवान भी ग्रहण नहीं किए हैं और मेरी ऐसी इच्छा हो गई, ग्लानी होने लगी उनको, भगवान ग्रहण नहीं किए हैं और ऐसी इच्छा हो गई। उसी सिद्धांत पर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। प्रसाद का, प्रसाद जो बनाता है, मैं कभी सोचता हूं जो प्रसाद बनाता है यदि उसके प्रसाद के सुगंध से प्रसाद को अनुभोग, प्रसाद तो नहीं भोग है ना, भोलेगा तब प्रसाद बनेगा ना, उसके सुगंध से या उसको देख करके जो जिह्वा पर पानी आ गई तब वो प्रसाद होगा, भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? वो प्रसाद है तो वही जिह्वा पर पानी आ जाए, लालच हो जाए, जिह्वा रे लालच बस इति उति धाय, लालच हो जाए उसके लिए भगवान का ग्रहण करने से पहले ही, तो प्रसाद नहीं हो सकता है। इसलिए प्रायः पहले जो भोजन बनाता था वही भोजन अर्पण करता था। देखा जाता है कि जो भोजन बनाता है उसे भूख खत्म हो जाती है, उसके जिह्वा पर पानी नहीं आएगा, जो खाने वाला होता है उसके जिह्वा पर पानी आता है। तो जो भोजन बनाता है वही अर्पण करे, प्रसाद कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत पावरफुल है प्रसाद अर्पण करना, भोजन अर्पण करना, जो प्रसाद बन जाए, और जो प्रसाद बन जाए और खाएंगे तो जरूर असर डालेगा। एनीवे, तो कोई भी चीज है हमें चाहिए साधुओं की संरक्षा में, साधु गुरु और शास्त्र। इंद्र से सीख सकते हैं, इंद्र को जब समझ नहीं आया, उनके समझ से परे था कि बाप रे बाप, ये तो हर गया था, मर गया था, इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? इंद्र भी विजय हुए थे, लेकिन इंद्र जब पावर देखे बलि का तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। एक ऐसी घटना और है बाली और सुग्रीव का, यहां बलि है वहां बाली है, बाली और सुग्रीव का। सुग्रीव को बाली खदेड़ दिए थे भगवान राम से संधि करने के बाद, पुनः आए लड़ाई करने के लिए और फिर खूब मार खाए सुग्रीव और चले गए। बड़े गुस्सा में थे भगवान राम के प्रति। भगवान राम ने कहा, भाई क्षमा करना, मैं गलत काम नहीं करना चाहता था, तुम दोनों भाई देखने में एक समान थे, इसलिए मैं बाण नहीं चला पाया कि पता नहीं कि कौन तुम हो और कौन तुम्हारा भाई है। अब मैं माला तुम्हें दे रहा हूं, ये पहने रहना, अब पता चल जाएगा। अब पुनः सुग्रीव तो भगवान राम के बल पर अब दहाड़ते हुए आए, जैसे बलि महाराज शुक्राचार्य के बल पर विश्वजीत होकर के दहाड़ते हुए आए, दोनों दहाड़ते हुए आए। देखिए इंद्र ने क्या किया और बाली ने क्या किया। बाली क्या किए, आक्रमण कर दिए ना। उनकी धर्म पत्नी तारा समझा रही थी, तारा ने सब कुछ भगवान राम के विषय में बताया कि प्रभु आप मत जाओ, आपका पुत्र अंगद हमसे ये बात कहा है, उसके गुप्तचरों ने बताया है कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जिनके साथ सुग्रीव मैत्री किए हैं। उनमें तो राम तो ऐसे हैं जिनका कोई पारावार नहीं, इंद्र भी नहीं उन पर उनको हरा सकते हैं, कोई नहीं हरा सकता है, अपराजेय हैं राम। अच्छा है आप उनके शरण में जाएं, और सुग्रीव आपका ही अपना बंधु है, भाई है, गलती कर दिया है, लेकिन आपके प्रति उसका प्यार भी है, आप उसे अपने पास रखिए। तारा बहुत समझाई लेकिन सुग्रीव को देख करके, जोश को देख करके बाली से रहा नहीं गया। बाली का अहंकार, उसके विजय की सफलता उसे रोकी नहीं, और हम लोग जानते हैं क्या हुआ बाद में। यहां पर इंद्र जब देखे बलि महाराज के ओजस, तेज, शक्ति, ये सब देख करके गुरु के पास गए, और यहां पर गुरु भी जो त्रिकाल दर्शी हैं वे समझ कर कहते हैं, मैं जानता हूं कारण क्या है। कहते हैं, शिष्याय उपभृतम तेज भृगुरी ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादी भृगुवंशियों के द्वारा इस बलि को ये तेज प्रदत्त किया गया है, उपभृतम ये दिया गया है, ये तेज दिया गया है। बलि आज के दिन कोई समान नहीं है, बहुत तेजस्वी है बलि। ओजस्विनम बलिम ने जेतुम न समर्थो असि कश्चनम बद विधो भवान वापी ब्रजयित्वे स्वर हरिम। तो मानव इंद्र कह रहे हैं क्या तो कोई उन्हें प्रास्त नहीं कर सकता है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि हमारे दृष्टि में तो आज कोई दिखाई नहीं पड़ता है, कोई नहीं है जो कि आज बलि को प्राप्त कर सकता है। तो इंद्र कहते हैं क्या भगवान भी नहीं? तो कहते हैं नहीं, आज भगवान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बलि का रक्षा करने वाले कौन थे? ब्रह्मवादी थे। कैसे भगवान भी उन पर प्रहार कर सकते हैं? तब पूछे बलि कि तब क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर बलि महाराज को बृहस्पति जी सलाह दिए हैं कि तुम लोगों के लिए अच्छा है कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, जब तक से तुम्हारा जो शत्रु पक्ष है उन लोगों का स्थिति पलट न जाए। काल बहुत बलवान है। एक काल था, एक समय था जब तुमने उस बलि को प्राप्त किया था, आज काल उसके पक्ष में है, आज तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम सब के सब लोग तस्मात निलय उत्सृज्य, तुम लोग स्वर्ग को त्याग दो, उत्सृज्य छोड़ दो। निलय उत्सृज्य मतलब घर से निकाला, ताड़ी पार है बम्बैया भाषा है ना, ताड़ी पार, तड़ी पार है, तड़ी पार जाओ, जाना पड़ेगा। जुयम तुम अकेले नहीं, सब के सब देवता, जुयम सर्वे त्रिविष्टपम, सभी देवता लोग यहां से जाओ। यात तो कहते हैं कब तक जाएं, कितना दिन तक बाहर रहें? कहते हैं यात कालम प्रतीक्षंतो, उस समय का तुम लोग प्रतीक्षा करना। यत सत्रो विपर्य, जब तक से यह काल तुम्हारे शत्रुओं की स्थिति के पलटने का समय न आ जाए, यानी जब विपरीत हो जाए तुम्हारे शत्रुओं के यह काल, तब तक तुम लोगों को बाहर रहना पड़ेगा। आज इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि बहुत शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि कोई ब्राह्मण आएगा और ब्राह्मण के चरणों में यह अपराध करेगा तभी हो सकता है। तो भगवान भी जब वामन देव के रूप में आए तो अदिति बड़ी खुश थी कि अब तो भगवान हमारा काम कर देंगे, पुत्रों को राज मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं कर दूंगा माता, लेकिन समय के अनुसार। और भगवान ने अदिति को बताया क्या करने का, पयोव्रत का पालन करने का, उन्होंने किया सब। बाद भगवान पुनः चतुर्भुज रूप में आए और उनको देखते देखते ही वो वामन ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। तो अदिति को आश्चर्य हुआ कि ये हमारे पुत्रों को राज दिलाएगा, ये छोटा बच्चा जिसको अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। तो उन्हें डाउट हो गया। तो भगवान भी ऐसा ही कुछ बात कहें जब बृहस्पति जी कहे हैं वहां पर कि माता आज के दिन बलि को प्राप्त करना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कभी कभी प्रचार करने में अच्छा चीज मिल जाता है. कल हम लोग गए थे, हमारे एक भक्त हैं आलोक अग्रवाल, उनके पास गए थे तो उन्होंने एक बात विष्णु से पूछा कि देखो भगवान किसी को कैसे बोला निकाल नहीं सकते ना, हैं? भगवान किसी को निकाल नहीं सकते हैं. नहीं पूछा गया भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते, कुछ उन्होंने प्रश्न किया. कुछ उत्तर दे रहे थे तो कहा कि एक बात भगवान नहीं कर सकते हैं, वो किसी को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सब जगह विद्यमान है तो कहां निकालेंगे, सब जगह विद्यमान है, सब कुछ उनका ही है तो कहां से निकालेंगे किसी को. तो भाई अपने घर से निकाल सकते हो ना, अपने घर में कोई है तो कहो इस रूम से उसमें चले जाओ तो रूम से निकाल सकते हो, घर से नहीं ना. देखो घर से निकालना मतलब गेट आउट, भगवान किसी को गेट आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ उनका ही है. तो बड़ा अच्छा बात बताए, सब कुछ उनका ही तो किसी को निकाल सकते हैं. तो भगवान ये बात किसे मेरे मन में आ गया जब मैं कहा कि जब भगवान ने कहा अदिति को कि आज उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. लेकिन भगवान जैसे बृहस्पति जी इस बात को कह रहे हैं वही बात भगवान वहां पर दोहरा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा वो रक्षित हैं. इसी प्रकार से ब्रह्मा जी इंद्र को एक बार और सलाह दिए थे जब बृहस्पति के चरणों में इंद्र अपराध कर लिए थे. कानपुर मंदिर का हम लोगों का मिशन स्टेटमेंट वही है, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा था न भवन्ति ही अभद्राणी यत्र गो द्विज गोविंद सेवया, जहां पर गाय ब्राह्मण और गोविंद की सेवा होती है न भवन्ति ही अभद्राणी, ही मतलब निश्चय ही, अभद्राणी मतलब अमंगल, वहां किसी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता है जहां पर गाय ब्राह्मण और गोविंद का सेवा होता है, जहां ये तीनों प्रसन्न हो. तो ब्रह्मवादी रघुवंशी लोग बलि महाराज से प्रसन्न थे, तो कोई सवाल नहीं था बलि को परास्त करने का. तो वही कहे कि इसलिए बलि को प्राप्त करना संभव नहीं है. हो सकता है यदि यही बलि जिस ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज यह बलवान हुआ है, यदि ब्राह्मणों के चरणों में कोई अपराध करे तो उनके श्राप से यह खत्म हो सकता है. और हुआ वैसे ही, शुक्राचार्य जिनके बल से बलि यहां तक आए थे वही शुक्राचार्य उन्हें श्रापित कर दिए. तो खैर कथा बाद में पढ़ेंगे. तो इस प्रकार से जब मंत्रणा दे लिए, एडवाइस दे लिए, एडवाइस दे रहे हैं, गुरु फोर्स थोड़े कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं शिष्यों को, आदेश भी दे सकते हैं लेकिन प्राय नहीं देते हैं गुरु लोग आदेश. यदि ना बोल दिया तब, इसलिए गुरु लोग एडवाइस देते हैं कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए. और शिष्य जो है वो शरणागत शिष्य, वो गुरु हमें तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, जो गुरु के मन को बात को पहले ही जान लेते हैं, जो कहने पर जानते हैं और कहने के बाद भी जो नहीं समझते हैं. तो गुरु सेवी, गुरु भोगी और गुरु अपराधी तीन होते हैं. तो बलि महाराज सॉरी इंद्र को उन्होंने एडवाइस दिया. क्या एडवाइस दिया? स्वर छोड़ करके चले जाओ तुम लोग. क्यों? हाँ, क्योंकि समय आज बलि के साथ है, बलवान है। तो राज कब प्राप्त हो सकता है? जब समय उसके विपरीत हो जाए। और उस समय विपरीत कब होगा? जब ब्राह्मण के प्रति वह, यही मंत्रणा थी। और श्लोक संख्या 32 जिस पर मुझे क्लास देना था वो अब आया। एवं सुमंत्रित अर्थ, एवं सुमंत्रित अर्थाते गुरुणाम अर्थ अनुदर्शना। क्या सुंदर बात है। एवं सुमंत्रित, मंत्रणा दिए, एडवाइस दिए। कैसा एडवाइस? सुमंत्रित, बहुत सुंदर, जिसमें सबका कल्याण हो वह है सुमंत्रणा। यानी जो भगवान अप्रूव किए हो, कहा जाता ना सेकेंड थॉट इज ऑलवेज चीप, जो फर्स्ट थॉट आता है वो परमात्मा संक्षम करते हैं, सेकेंड थॉट जो होता है बुद्धि काम करना शुरू करता है। तो परमात्मा के द्वारा जो संक्षम किया है, प्रोवाइडेड जो मंत्रणा देने वाला है, जिसे मंत्रणा पूछी जाए, उसमें अपना उसका कोई स्वार्थ न हो। यदि अपना स्वार्थ होगा तो पहले अपना स्वार्थ देखेगा तब मंत्रणा देगा, तो वह सुमंत्रणा नहीं हुआ। सुमंत्रणा वही हुआ जो सही हो। भले ही जिसको एडवाइस दी जा रही है उसे अच्छा न लगे, लेकिन सही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा गाइड करते हैं और उसके भी हृदय में परमात्मा है। ये सुमंत्रणा होगी तो जरूर अच्छा न लगे तो भी व्यक्ति स्वीकार करेगा। इसी केस में देख लीजिए, ये अच्छा लगने वाला बात नहीं था कि इंद्र मलाई पिस्ता खाने वाला स्वर्ग का राजा था और ये सुमंत्रा में तुम घर द्वार छोड़कर भाग जाओ, भटको पानी पीने के लिए, कहीं कोई खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा, घर द्वार छोड़ दो, कंगाल बन जाओ, भिकमंगा बन जाओ, बाबा बन जाओ, साधु बनकर जाओ, घूमो। ये एडवाइस दिए ना, अच्छा नहीं था, लेकिन ये सुमंत्रणा था। तो एवं इस प्रकार से सुमंत्रित अर्था देवताओं के कल्याण प्रदत्त, यह मंत्रणा था। इसमें देवताओं का कल्याण होना था। ते मतलब आप लोगों का, देवताओं का। किसके द्वारा दिया गया था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गुरुणाम अर्थ अनुदर्शिना। गुरुणाम बृहस्पति जी जो कल्याण ही सोचते हैं, गुरु जो होते हैं हमेशा अपने शिष्यों का कल्याण सोचते हैं, इसीलिए यहां पर कहा है गुरुणाम अर्थ अनुदर्शिना। गुरु कौन है? गुरु का परिभाषा यहां पर दिया गया है, गुरु वह है जो अपने शिष्य का कल्याण देखता है। गुरु वह नहीं है जो देखता है कि शिष्य कितना पैसा दे रहा है हमको, कितना चेला बना रहा है हमारे लिए, कितना क्या कर रहा है हमारे लिए। गुरु ये नहीं देखता है। गुरु देखता है कि किसमें हमारे शिष्य का कल्याण होगा। उस शिष्य है, शिष्य मतलब 100% सरेंडर सोल। जिस प्रकार से मां है, मां अपने नवजात शिशु, जब भी प्रपन्न शब्द आता है ना, तो प्रपन्न शब्द को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नवजात शिशु का मां से संबंध। जो बच्चा अभी जन्म लिया है वो 100% मां पर डिपेंडेंट है। बच्चे को बीमारी होती है तो डॉक्टर बच्चे को सुई नहीं देता है ना जी, आजकल देता है, गड़बड़ हो गया, इसलिए बच्चे बाप मां को कहते हैं गुड बाय। पहले था कि मां को दवा दी जाती थी क्योंकि मां अपने स्तन का दूध पिलाती थी, आजकल तो मां बोटो का दूध पिलाती है, तो उसको देने की जरूरत क्या है। तो शास्त्र बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है, जब भी प्रपन्न शब्द आए सस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, जब प्रपन्न शब्द आए तो समझना चाहिए कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कैसा है, नवजात शिशु के समान। जो भी बच्चा जन्मा हुआ है उस बच्चे को यदि कोई तकलीफ होता है तो मां को दवा दी जाती है न कि बच्चे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी मां की होती है, तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए कहा गया है गुरु राम अर्थ अनुदर्शनाम, गुरु क्या देखता है हमेशा किसने मेरे शिष्य का कल्याण हो, क्योंकि वो शरणागत है मुझ पर। जैसे मां क्या देखती है किसने मेरे बच्चे का कल्याण होगा, भले मां बेचारी फटी पुरानी कपड़ा पहनेगी बच्चे को अच्छा पहने, अपने नहीं खाएगी बच्चे को खिलाएगी, वैसे हैं गुरु, गुरु मां के समान है। जब कल्याण का बात, कभी कभी बच्चे को घाव हो जाता है, हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस है, घाव हो जाता था चतुर्भुज दास पक जाता था तो मां दबाती थी, हम लोग रोते थे खूब, सोचते मां मेरी शत्रु है, लेकिन खिल निकाल देती थी दबा दबा करके हा? ताकि घाव फिर पकने ना पावे, मां मेरी शत्रु नहीं थी, मेरा कल्याण करती थी। तो ऐसे ही कभी कभी गुरु जी दबाते हैं भक्तों को, अच्छा नहीं लगता है, उनके कल्याण के लिए करते हैं। तो गुरु राम अर्थ अनुदर्शिना, अर्थ अनुदर्शिना, शुक्राचार्य ऐसे गुरु थे जिसमें देवताओं का कल्याण हो, इसलिए कल्याण प्रद बात उन लोगों से किए, और इंद्र को भी पूरा विश्वास था शुक्राचार्य पर, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हित्वा त्रिष्टम, तुरंत उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया, हित्वा त्रिपिबस्त जगमु गिरवाण कामरूपिणहा। तो कोई प्रश्न कर सकता है, अरे जब छोड़े होंगे जा रहे होंगे तो कुछ तो लेकर जा रहे होंगे ना, सब कुछ छोड़िए दिए क्या, अरे उनको जान बचाना मुश्किल था, लेकर जाना कोई बैलगाड़ी और घोड़ा तो मुश्किल था, उनको जान बचाना, इसलिए सुखदेव साहब कहते हैं कामरूपिणहा, वहीं अंतर ध्यान हो गए कामरूपिणहा। देवता लोग एक्सपर्ट होते हैं, किसी प्रकार का रूप बना देंगे। एक आचार्य कहते हैं कि देवता लोग कहीं गए नहीं, वहीं पर थे, देख रहे थे, छिपे हुए थे, बलि महाराज नहीं देख पा रहे थे उन देवताओं को, लेकिन देवता लोग देख रहे थे। जैसे जीव गोस्वामी वर्णन किए हैं नलकुबर और मणिग्रीव के विषय में, कि नलकुबर मणिग्रीव जब नारद जी के श्राप से वृक्ष बन चुके थे तो नारद जी ने कहा था तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी, तो जब कोई भी उस जम अर्जुन वृक्ष के नीचे कोई पूजा करते तो कुछ मांगते थे तो देवता लोग घूमते रहते थे, उनके सप्लायर लोग, और नलकुबर मन गए इसको लाकर दे देना उसको लाकर दे देना, वो समझते थे, देव भाषा में बात कर लेते, संस्कृत में बात कर लेते थे, अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, समझ जाते थे। तो देवता लोग आज भी यहां पर हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई एक बार प्रभुपाद हम लोग जब आरती करते हैं तो इधर दिखाते हैं ना प्रभुपाद को, फिर उधर दिखाने किसको दिखाते हैं, देवताओं को दिखाते हैं। देवता लोग जब कीर्तन होता है तो इंद्र आकर नाचते हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे सब देवता लोग वहां पधार गए थे, वो छद्म रूप से रहते हैं, प्रमाण देते हैं, रामायण में कथा है दशरथ जी का जब पिंडदान भगवान श्री राम ने किया था तो उसका साक्षी देवता लोग दिए थे कि हाँ उन्होंने किया है, देवता लोग साक्षी दिए थे। तो देवता लोग हमेशा रहते हैं,
कर रहते हैं। तो यही प्रकार हित्वा त्रिविष्टम जगु गिरवाणाम काम रूपिण हो, ये गिरवाणा यानी शरीर बदलने में सक्षम, काम रूपिण हो इच्छा अनुसार शरीर बदलने में सक्षम है ये देवता लोग। तो देवता लोग वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। देवेशु अथ निर्णयेशु बलि वैरोचना पुरीम देवा देवधानी अधिष्ठाय बसम निन्ने जगत त्रयम्। अब तो बलि महाराज चढ़ाई किए थे, लड़ाई हो से पहले ही घर छोड़कर भाग गए थे, सब स्वर खाली पड़ा हुआ था, खाली नहीं था वहीं पर थे लोग लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे थे, देख रहे हैं कोई देवता है सब खाली पड़ा हुआ है। देवेशु अथ निलय निलनेशु बलि देखे, बलि कहा गया है बलि बैरोचना पुरीम, बैरोचन शब्द क्यों कहा गया है, बलि के पिताजी का नाम था विरोचन, वो विरोचन पुत्र थे। ये देवता लोग के बाद छल से विरोचन का शरीर मांग लिए थे और अब समय आ गया कि देवता लोग अब भागे, इसलिए कहा गया बलि विरोचनम पुरीम, उस स्वर्ग में पधारे और देवताओं का जो कुछ भी था अपने वश में कर करके तीनों लोग पर वे राज्य करने लगे। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्रजा पालन हो रहा था, शुक्राचार्य का भी रोटी कपड़ा मकान चल रहा था, फर्स्ट क्लास कोई तकलीफ नहीं था, शुक्राचार्य का आदर सम्मान था, बलि महाराज का सम्मान करते थे, कोई काम करने से पहले पूछते थे, पूछकर काम किया करते थे, तो इस प्रकार से बलि महाराज शुक्राचार्य को बड़े खुश किए थे। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए शिष्य के लिए कुछ भी, कृष्ण प्रसन्न हो पारायण तो कृष्ण प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं, कृष्ण तभी प्रसन्न होंगे जब गुरु प्रसन्न होंगे। जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस्य अप्रसादाद नगति कुतो, यदि गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न होंगे तो कहना ही क्या है। तो हम लोगों के जीवन की सार्थकता इसी में है कि गुरु को प्रसन्न करने में लगे। हम लोग प्रायः कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं। यदि गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न करने की जरूरत है तो गुरु और वैष्णवों को। गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप। भजन में कैसे है, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण, वैष्णव लोग गोविंद के प्राण हैं, यदि प्राण का रक्षा करो तो प्राण बल्लभ बन जाओगे, प्राण प्रिय बन जाओगे, कृष्ण के प्रिय बन जाओगे। तो सर्वतो भावेन मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से हमें चाहिए कि गुरुवर को प्रसन्न करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, गुरु को प्रसन्न करें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। अब इस श्लोक में देखने को मिलता है बलि महाराज कहा गया तस्व विश्व जैनम शिष्यम, बलि महाराज कैसे से विश्व विजेता यज्ञ कर करके विश्व विजयी हो गए थे, विश्व विजयी थे, स्वर्ग के राजा जिनके नाम से भाग गए स्वर्ग छोड़ करके, लड़ाई भी नहीं करना पड़ा, वे बलि महाराज सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने गुरु शुक्राचार्य को बहुत प्रसन्न किए। भृगव शिष्य वत्सलहा, गुरु हमेशा कैसे हैं, शिष्य वत्सलहा, कितना सुंदर बात है, वत्सला वत्स मतलब बछड़ा है? गाय जब तक से बछड़ा नहीं देखती है
दूध नहीं देती है।
वत्सलता प्यार से संबंधित है। गाय और बछड़ा दोनों में बहुत प्यार होता है। गाय का बछड़ा, कितने लोग गाय का बछड़ा देखें तो हाथ उठाओ। तो मैं इसलिए पूछा कि बहुत लोग नहीं देखे होंगे। जो कितने लोग नहीं देखे वो हाथ उठाओ, थोड़ा ईमानदारी से। जो नहीं देखे कर जा अपना तलासरी फार्म में जरूर चलो। संडे चलना आप लोग, नेक्स्ट संडे तलासरी फार्म दिखाएंगे बछड़ा। बछड़े को खूंटे में बांध दो, गाय तो चरने चली जाती है। बेचारा दिन भर चुपचाप बैठा रहेगा, और जब शाम हो जाएगा, मां को आने का समय हो जाएगा, तो उठ करके खूंटे के चारों तरफ खूब परिक्रमा करेगा। अब मेरी मां आ रही है, कितना आनंद से। कैसे है वृत्रासुर का प्रार्थना, किसी को याद है? अजात पक्षी इव मातर खगा, नहीं उसके ऊपर क्या है लिखे हो? वाह वेरी गुड, तू कैसे जान गया कि हम यही बोलने वाले थे? ये अच्छा चेला होगा। अजात पक्ष इव मातर खगा स्तन्या यथा तक वस्त तरा चुधार्था प्रिय प्रिय विशतम विशस्नता मनोरविंदा छदृक्षते त्वयाम अयात पक्ष इव मातर खगा। चिड़िया का बच्चा जिसमें पंख नहीं निकला होता है वो घोंसले में शांति से बैठे रहते हैं, और सुबह जब शाम होता है, जब चिड़िया आने को होती है, तो चूचू चूचू करते हुए घोंसले के बाहर आता है। कभी कभी बच्चे गिर हो जाते हैं नीचे, तो वृत्रासुर सोचे कि ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ कामना है। कामना किस चीज की है? कि वो मां आकर के खिलाएगी, लेकिन मां मुंह में लेकर के आती है, मुख मुंह में डालते खिला देती है, बस और काम इसको ही करना है, कि वो ठीक नहीं है। तब उदाहरण दिए स्तन्या यथा वस्त्र तरा क्षुधार्था, जिस प्रकार से वस्त्र गाय का बछड़ा क्षुधार था अपने भूख को मिटाने के लिए, स्तन्य काम वो मां का स्तन पान करना चाहता है। वो भी गाय चारा खाती है, चारा से दूध बनता है, तो अंतर हो गया ना। चिड़िया का चिड़िया जो है मुंह में लाती है और मुंह में डालती है, ट्रांसफर कर देती है। ये भी ट्रांसफर करती है, लेकिन चारा को कैसे करती है? दूध के रूप में। तो उससे किसी में भी कामना है। तो तीसरा उदाहरण दिए कि जिस प्रकार से एक विरहणी पत्नी जिसका पति विदेश में हो, बहुत दिन के बाद आने वाला हो, तो उसकी इच्छा में कैसे रहती है, जैसे सबरी भगवान श्री राम की इच्छा में कैसे थी कि प्रत्येक दिन उसके लिए नया दिन था कि आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे। वो नहीं सोच बोर नहीं हो रही थी कि अरे इतना दिन मैं किया है ही नहीं, डेली नया दिन था सेवरी के लिए। हम लोगों को प्रतीक्षा में वैसा ही दिन, डेली नया दिन होना चाहिए। सेवा करने में डेली नया, एवरी डे फ्रेश होना चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए सेवा में, एवरी डे फ्रेश कामना होनी चाहिए। इंतुजियाजिम रहना चाहिए, इंतुजियास्टिक रहना चाहिए, कोई भी सेवा हो हमेशा। तब गुरु वैसे शिष्यों के प्रति शिष्य वत्सलहा, शिष्यों के प्रति गुरु का स्वाभाविक स्नेह होता है, प्यार होता है। तो भृगु मुनि का स्वाभाविक प्यार था बलि महाराज के प्रति, और बलि महाराज की सेवा से बड़े प्रसन्न थे। तब वो सोचो कि इनका नौकरी अब परमानेंट कर देते हैं, पहले टेम्पररी था ना, ये इनको मिल गया था स्वर करा, लेकिन टेम्पररी था। जानते थे शुक्राचार्य की ये बृहस्पति के आदेशानुसार, बृहस्पति के सलाह से लोग विष्णु के पास जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो परमानेंट करना चाहते थे। और परमानेंट करने के लिए वे 100 अश्वमेध जग करना चाहे, सतेन हमेधानाम 100 अश्वमेध जग कराने का परामर्श दिए बलि महाराज को।
जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसका सीट पक्का इंद्र का। किसको इंद्र बनना हाथ रहो, 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन इंद्र का बाप बनना है ना, ऊपर जाना है उसके ऊपर गोलोक धाम में, तो ज्यादा नहीं करना है, 16 माला करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे स्वर्ग में जाओगे, लेकिन 16 माला करोगे तो गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करो गोलोक वृंदावन। और ये प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं, तो जो व्यक्ति हरिनाम करेगा वो गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर यह प्रसंग है, कथा बलि महाराज का मेरा सबसे मोस्ट डियर प्रसंग है। जब कहीं कथा करता हूं ऑलमोस्ट 20-25 बार कथा हो चुकी होगी बलि महाराज की, तो इट्स रियली वेरी गुड। आप लोग ध्यान से पढ़ लेना पूरा चैप्टर, पूरा स्कंद का 5-6 चैप्टर है, 8 चैप्टर आई थिंक है, और मजा आएगा, कथा आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक शिष्य का गुरु से कैसे सेवा करना, क्या करना है, सब कुछ प्राप्त होगा, भगवान कैसे सेवा कर सकते हैं इत्यादि। तो समराइज इस वर्ष, गुरु हमेशा अपने शिष्य के प्रति वत्सल होते हैं, प्यार रखते हैं, तो कभी भी शिष्य को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरु जी हमको प्यार नहीं करते हैं। कभी कभी भक्त कहते हैं अरे हमारे गुरु जी नहीं हमारे विषय में सोचते हैं, वो तो नए नए भक्त के ज्यादा सोचते हैं हमारे विषय में नहीं सोचते हैं, ऐसा मैं सुना हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्यों के प्रति ठीक पर, माँ और बाप, बाप माँ अपने बच्चों का हमेशा ख्याल करते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होता है और 20 साल का बच्चा हो गया, धर्मांतर होगा ना, छोटा बच्चा का माँ अपना स्नान कराएगी खिलाएगी अपने हाथ से, और 20 साल का गद्दा हो गया उसको थोड़ा खिलाएगी अपने हाथ से, अपने हाथ से खाओ तुम, है ना, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, आगे बेटा ही है ना। तो वैसे ही कोई चाहे नया भक्त हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर डिवोटी हो, डजंट मैटर, गुरु का प्यार वैसे ही होता है, हसोत्साहित नहीं होना चाहिए, और हमेशा नौ प्रत्येक दिन एक ही मूड रहना चाहिए कि किस प्रकार से गुरु का मैं सेवा कर सकूं, कृष्ण का सेवा कर सकूं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन कमेंट? यस क्वेश्चन है, माइक दौड़ो भाई, प्रसाद है, कहीं चिंता करता है, इसको जल्दी भूख लग जाता है।
हरे कृष्ण। तो जी आपने बताया कि जब वामन भगवान अदिति के समय समक्ष प्रकट हुए, तो फिर जब बालक के रूप में हुए तो अदिति को संशय हो गया कि बालक हमारे मतलब पुत्र की रक्षा कैसे करेगा, राज्य कैसे दिलाएगा, तो मतलब यहाँ पर माता अदिति को भगवान की कृपा यानी भगवत कृपा भी संशय हो रहा है, फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझ?
नहीं, माँ थी ना, तो असल भाव तो होता है ना, आखिर तो उनको दो प्रकार से इंद्र के प्रति प्यार था, देवताओं के प्रति, और जब छोटा बालक देखी तो माँ का वसलता जो होता है वो ऐश्वर्य भाव का इच्छा नहीं रखता है, ईश्वर भाव वो माँ थी उसमें वसलता है। तो जैसे कृष्ण के लीला में भी ऐसे हैं, यशोदा मैया कितनी बार चिंतित थी भगवान का विश्व रूप देख करके भी, उसके मुंह में देखकर फिर भी मैया हमेशा चिंतित रहती थी, तो वात्सल्य भाव माधुर्य से सॉरी ईश्वर से बढ़कर होता है। पीछे जल्दी माइक माइक ऑफ मत करना, देते जाए बांटते जाओ।
हरे कृष्णा भाजी। प्रभु जी आप बार बार कथाओं में मिलता है कि सुनने के लिए मिलता है कि इंद्र से ही जितने राक्षस होते हैं बलि होते हैं या कोई हुए हैं उनके खानदान से हुए हैं जितने हुए हैं, इंद्र से ही युद्ध होता है, ऐसा क्यों?
क्या बता?
मतलब इंद्रलोक पर ही आक्रमण करते हैं, इंद्र से ही युद्ध करते हैं, करने के लिए लोग जाते हैं, इंद्र को मारने के लिए ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
कई एक कारण है। एक तो पौराणिक कारण है कि पहले यह पूरा पृथ्वी जो था वह असुरों का था, देवताओं के पास कुछ भी नहीं था। एक बार इंद्र एक बकरी का रूप धारण कर करके, नहीं कुत्ती का रूप धारण करके गए और गए कि महाराज आप तो राजा हो पूरे विश्व का, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, थोड़ा कुछ जगह दे दो। तो दानव राज ने कहा कि जाओ पृथ्वी में परिक्रमा कर लो, तीन बार में जितनी तुम जमीन प्राप्त कर सकते हो उतना तुम्हारा हो गया। और इंद्र लगे परिक्रमा करने, तो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा कर गए। तो छल से इंद्र असुरों से राज ले लिए, तो खटपट वहीं से शुरू हो गया। ये बिगिनिंग है। उसके बाद दूसरा उत्तर यह है कि सब लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, तो स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज है जी, सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। यहां भी लोग बम्बे वाले बहुत लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो यहीं बनाना चाहते हैं, तो असुर लोग भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग जान तपस्या वो नहीं करना चाहते हैं, आक्रमण कर लेते हैं डायरेक्टली, सीधे शॉर्टकट करते हैं वो लोग।
हरे कृष्णा प्रभु जी, इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, पर इंद्र का बाप बनने के लिए सिर्फ 16 माला करना पड़ता है। ये आज का आपका सबसे उत्कृष्ट टिप्पणी थी। और इसके पहले आपने बताया गुरु आदेश नहीं देते, सलाह देते हैं कहीं, फिर आपने उस पर थोड़ा सा हल्का सा मजाक किया कि कहीं उल्लंघन न हो जाए, लेकिन एक्चुअली इसमें उदारता होती है गुरु की, कि वो समझते हैं कि मैं आदेश दूंगा तो कहीं चेला या शिष्य उसको कोई भारी न पड़ जाए, ये उनकी उदारता के प्रमाण होता है। जो अच्छे गुरु होते हैं आदेश नहीं देते, सलाह देते हैं, और अच्छे चेले उसको सलाह को आदेश के रूप में ले लेते हैं।
आदेश उसे दी जाती है जो उदंड हो। शिष्य मतलब डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, शिष्य मतलब शिष्टाचार, जिसमें शिष्टाचार है उसके लिए आदेश की जरूरत नहीं है, सलाह की जरूरत है।
आदेश वाले गुरु बहुत सारे हैं जो इस समय जेल में प्रशासन का आदेश मान रहे हैं। और दूसरा, अब प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न की तरफ आते हैं, मेरा प्रश्न है।
अच्छा, ये प्रश्न नहीं हुआ?
नहीं, ये तो टिप्पणियां थी,
ये बैकग्राउंड था।
तो आपने शुरू में कहा,
मुझे एक और बात याद आ गया। एक बार मैं कनाडा में था, 82 या 83 था, तो एक माता जी थी पंजाबी, गोपाल कृष्ण महाराज शिष्य हैं। तो मैं कहा कि माता जी जब हो जाता है ना, कैसे माला जप करती हैं सब होता है टोरंटो में, तो कहती है नहीं जप नहीं करती हूँ। क्यों? और दीक्षा ले चुकी? दीक्षा नहीं, हमारे गुरु जी ने कहा है कि गुरु शिष्य को भगवान के धाम ले जाएगा, तो चाहे जब करूंगा ना करूं, महाराज हमको आने के ले जाने के लिए। मैं कहा इस भ्रम में मत रहना, अब जब करोगे तब महाराज आएंगे लेने के लिए।
जैसे हम जैसे जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थी में ज्यादा डूबे हैं, हमारे घर में प्रसाद बनना या प्रसाद बनाना, फिर भगवान को ऑफर करना, और ऑफर करने के पहले मुंह में पानी आना, इस सिचुएशन पे आपने बोला। और हम जैसे गृहस्थों के घर में जब प्रसाद बना रहे, मेरी वाइफ बना रही या कोई और लेडी बना रही है किचन में, तो ये स्वाभाविक है कि अगर हमारा मनपसंद बन रहा है तो दिल में आता है, उतावलापन रहता है, जल्दी बने, जल्दी ऑफर करें, जल्दी लेकर आए सामने, एक मुंह में पानी आना स्वाभाविकता है। तो इस सिचुएशन में आप बताइए कि बना कोई और रहा है, ऑफर वही करेगा, पर लार टपका रहे हम बैठ के सोफे पे, तो इसको आप उचित अनुचित कितना देखते
हैं? इसीलिए मैंने उदाहरण दिया माधवेंद्रपुरी का ना, माधवेंद्र अर्पण नहीं कर रहे थे, पुजारी अर्पण कर रहा था। जब घंटी सुने, अरे रे भगवान अभी तक नहीं खाए और मेरे मुंह में पानी आ गया। वो फास्टिंग किए, यदि आपके मुंह में पानी आ जाए उस दिन ना, तो उस दिन फास्टिंग कर लेना खाना में।
ये तो प्रश्न ऐसा था कि इसमें आपने मुझे ही फंसा दिया है।
इसीलिए उस भोजन को यदि देखेंगे कि ये भगवान के लिए है तो पानी नहीं आएगा, अपने लिए देखोगे तो पानी आएगा। ठीक वैसे कोई स्त्री है, कोई लड़की है, कोई भी है, ये देखोगे उसको बहन के रूप में देखोगे, मां के रूप में देखोगे तो उसमें काम वासना उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अपना भोग समझोगे तो काम वासना उत्पन्न होगी।
ये बात सही है आपकी।
ठीक वैसे ही भोजन का भी। चतुर्भुज प्रभु, तो ये बोलते हैं रोज पानी है, रोज फास्टिंग। हाँ, रोज फास्टिंग करेंगे तो अपने आप सूख जाओगे, फिर पानी आएगा ही नहीं। हाँ जी।
अरे प्रभु, आप उदाहरण दे रहे थे जो माया जो है कई रूपों में आती है।
बिल्कुल।
तो जिस तरह से हमको जो प्रोग्राम मिला हुआ है, जो प्रभुपाद ने हमें प्रोग्राम दिया है, मंगल आरती आना है, गुरु पूजा करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर कोई एक चीज को हम छोड़ के जो भाई हम ये इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, या भागवतम क्लास को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, या और कोई चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, तो उस चीज का क्या आप समाधान बताएंगे?
तो इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों को अपने आप इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। वी हैव टू इंस्पेक्ट आवर सेल्फ कि मैं जो कर रहा हूं, अभी भागवतम क्लास हो रहा है, मैं फोन लेकर जा रहा हूं, एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है अर्जेंट, और एक होता है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। कोई चीज हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, कथा में रहो। कुछ अर्जेंट इम्पोर्टेंट है तो दूसरा बात है। तो हम लोगों को स्वयं इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसे गुरुजी और कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये वेटिंग कर सकता है कल तक के लिए, या एक घंटा बाद हो सकता है, हमको डिसाइड करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यदि हम अपने को चेक, दूसरा हमें क्या चेक कर सकता है जी? हम यही दो आदमी बैठे हुए हैं, हमारे मन में क्या, आप क्या जानते हो? हमें जानते अपने हमारे मन में क्या है। तो हमको स्वयं इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। इसलिए ईच इंडिविजुअल जो भी भक्त बना है उसको भक्ति में आगे बढ़ना है तो स्वयं को इंस्पेक्टर बनना ही पड़ेगा। दूसरा इंस्पेक्टर नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, टेम्पल कमांडर नहीं, स्वयं इंस्पेक्टर बनो कि मैं कहां जा रहा हूं।
तो कई बार जो हम कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं तो इस तरह से क्यों होता है?
उसका भी उत्तर यही है, इंस्पेक्टर आप बनो कि आप जो कहते हो, करते हो, करनी कथनी में अंतर है क्या है। दूसरे को मत देखो, अपने को देखो पहले। चैरिटी बिगिंस एट होम। यस। अमिया रस प्रभु,
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप प्रसाद के बारे में जो बताए कि जो कुकिंग करता है उसको भोग लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो कुकिंग करता है आधा से चम्मच में लेते हैं हाथ में, उसको टेस्ट करते हैं नमक ज्यादा पड़ा है कि कम पड़ा है, फिर भोग, फिर ज्यादा कम है तो फिर नमक डाल के बाद में उसको भोग लगा के बाद में देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं?
मैं दोनों सुना हूं लेकिन इसके विषय में मैं पूरा जानकारी नहीं रखता हूं, तो रामरूप प्रभु से पूछना, हमारे हेड पुजारी से, वो बताएंगे। ठीक है, नहीं सेवातुल प्रभु से पूछना, हमारे मिनिस्टर हैं, बताएंगे। हरिदास वो क्या बताएगा, उसको तो पानी पहले ही आ जाता है। और कोई प्रश्न? ओके। हाँ हाँ,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
अच्छा,
जैसे कि
गोपाल बहुत दिन के बाद प्रश्न किया, चलो पूछ।
जैसे कि इंद्र की उपासना करके लोग स्वर्ग तक जाना चाहते हैं, तो उनका कोई ये लालच भी है, लेकिन उसी दौरान वो पृथ्वी पर भी आते हैं जन्म लेने, तो क्या उनको भक्ति के बारे में ऐसा नहीं बताया गया, या बताते थे उस समय भी, ताकि वो भक्ति करके भगवान के पास जाए?
मैं समझा नहीं।
लोग इंद्र की उपासना करके स्वर्ग पाना चाहते हैं, लेकिन उसी दौरान वो पृथ्वी पर नीचे जन्म लेते हैं, तो क्या उस समय ऐसा प्रचार नहीं किया जाता भक्ति के बारे में, ऐसा मतलब भगवान की उपासना करके गोलोक धाम जाना चाहिए, वैकुंठ जाना चाहिए?
गोलोक धाम जाने के लिए सबको यहीं पर आना पड़ेगा। मैं कई एक बार लेक्चर बताया हूं कि पृथ्वी लोक ही वहां एयरपोर्ट है जहां से सब जगह की फ्लाइट खुलती है, नरक जाने की, स्वर्ग जाने की, वैकुंठ जाने की, गोलोक जाने की, सब जगह से। बॉम्बे एयरपोर्ट से जाता है ना, दिल्ली के फ्लाइट जाता है, कलकत्ता के फ्लाइट जाता है, चेन्नई के फ्लाइट जाता है, वैसे ही यहीं से जाता है। मनुष्य देह जो है ना पृथ्वी लोक पर, मनुष्य देह ही वह देह है। देवता लोग भी तरसते हैं पृथ्वी लोक पर मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए, इसलिए जो लोग मनुष्य देह प्राप्त किए हैं, मानुष जना पाइया राधा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया भी सखायनो। बंधुओं, जो मनुष्य देह प्राप्त किया है इस भूलोक पर, सार्थक करो भगवान का भजन कर करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम और गोक जाओ। स्वर्ग जाना बुद्धिमानी नहीं है, यहां पर खाना पीना सोना ये बुद्धिमानी नहीं है। इस कान ज्वाइन करके इसका काम मत करो कम से कम। नायम देहो देह भाजा निलोके कासान कामात अरहते बिड भुजाम जे, बिड भुजाम मत बनो। स्वर्ग में जाओ क्या फायदा, छीणे पुणे मर्तलोकम विसंती एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाल भंते। पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर आना पड़ेगा, क्या फायदा। यस, नाउ हरिदास और हनुमान आज दोनों में हाथ उठा लिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों की इच्छा होते वैकुंठ धाम जाने के लिए, जो बलिमार्ग को तीन पाद भूमि मांगा भगवान।
आपने पहले क्या भक्त की इच्छा होती है क्या?
वैकुंठ जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए इच्छा होते। बलि महाराज जब भगवान ने बलि महाराज जो तीन पाद भूमि मांगा, दो पाद सब ले लिया और एक पाद जो बोल जाओ मेरा माथा में रखो, इसका क्या आशीर्वाद है ना क्या और कुछ है? आशीर्वाद हो तो मतलब ठीक है, मैं आशीर्वाद रख दिया अब मैं मेरा दास हो गया। अब नीचे दबाना ठीक नहीं है, जो नीचे दबा देते तो मैं पाताल में चला जाओ, ऐसा कारण क्या है?
तब चलना चाहिए, अब भगवान से पूछते हैं हमने गलती से क्यों कर दिया।
यानी ये तो सही बात है, भगवान जो जो प्रहलाद महाराज को तो आशीर्वाद दिया, फिर ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया।
अब मैं समझ गया हूं प्रश्न। पहला नंबर, भक्त लोगों की एक ही कामना होती है, वह है भगवान का सेवा करना। भगवान के धाम में नहीं जाना चाहते हैं, किसने बोल दिया? भगवान चेतन महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। जन्म लेना पड़े, जन्म लेना पड़े, मुक्ति मैं नहीं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? भक्ति चाहता हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे आनंद यहां पर आता है, आपका गान करने मुझे आनंद आता है, मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब लोग जो लगे हुए हैं संसार में भोग रहे हैं वो लोग जाएं, मैं तब तक से रहूंगा। हनुमान जी आज भी राम राम कर रहे हैं, ऊपर नहीं गए, सबको लेकर के भगवान गए। हनुमान जी प्रण ठान लिए कि सब नहीं उतर, सबका उद्धार नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट पैसेंजर हूंगा जाने के लिए ऊपर। तो भक्त लोगों की एक इच्छा होती है, नारायण परासर्वे नक्तस्तस्तमित्रे स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, उनके सब बराबर है, स्वर्ग हो नरक हो कहीं भी हो जाने के लिए तैयार होते हैं। तो पहला नंबर। दूसरा, बलि महाराज के कई एक शिक्षाएं प्राप्त करते हैं भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये दो पग में भगवान सब माप लिए, तीसरा पग कहां रखोगे बताओ? बलि डिंग तो बड़ा हांक दिया, तीन पग दूंगा कहां रखूंगा बताओ, तो झूठा हो गया, इसलिए तुम्हें गुरु ने श्राप दे दिया था, भगवान ने सब बोल दिया जो शुक्राचार्य बोले थे। शुक्राचार्य वहीं सुन रहे थे, भगवान बताना चाहते थे कि हमारे भक्त कितने महान होते हैं। शुक्राचार्य ये नहीं समझे कि बलि के पास तीसरा पग देने के लिए भी जगह है। शुक्राचार्य ने कहा था, अरे बलि तो नहीं जानता, एक पग में ऊपर एक पग नीचे डाल, तीसरा कहां जाएगा, तू पूरा नहीं कर पाएगा, इसके चलते में नरक में जाना पड़ेगा। यही बात कहे थे शुक्राचार्य ना, श्राप यही दिए थे ना, झूठा बनने के चलते। भगवान इस बात को प्रूव करना चाहते थे, शुक्राचार्य सुन लो, मेरे भक्त कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं उनके लिए आता हूं। सत्यम विधातु निजमित भास्तम टू प्रूव दिस स्टेटमेंट ऑफ डिवोटी। इस बात को सत्य करने के लिए भगवान ने कहा कि बलि तो तीसरा पद कहां रखोगे, कहां तीसरा पद मैं कहां रखूं, क्या तुम्हारे पास है, कहां दूं। बलि महाराज बड़े खुश थे। बलि महाराज समझते भगवान क्या चाहते हैं और भगवान समझते बलि क्या कहने वाला है। बलि ने कहा कि प्रभु सब कुछ चला गया है लेकिन मेरा सिर तो है ना, आप अपना तीसरा पग कहां रखिए, मेरे सिर पर रखिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, कोई कह सकता है अरे सब कुछ चला गया, ये तीसरा पग सिर पर, ये कौन इतना बड़ा हुआ। प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं, धन से धनवान बड़ा होता है। बलि महाराज धनवान है। आज इंडिया में मुकेश अंबानी धनी है ना, सब पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है, उनके पास क्या है, नाम है, नाम है ना, नाम से वो धनवान है। मैं वही कभी कभी कहता हूं कि मेरे पास 100 रुपया रहता है, 2 महीना 4 महीना रह जाता है, खर्चा ही नहीं होता है, क्योंकि आप लोग हो सेवा कर लेते हो, जो चाहिए पानी चाहिए प्रभु जी पानी लगा देते हैं, हमें खरीदना नहीं पड़ता है। तो धन से धनवान बड़ा होता है। तो 2 पग जमीन जो था उनका धन था, लेकिन बलि महाराज कौन थे, धनवान थे। तो अपना तीसरा पग कहां रखे, सिर पर,
एक तो भक्त थे ना,
इसलिए तो भगवान के भाव को समझ पाए ना। भक्तों के भाव, भक्तों के मान को बढ़ाने में भगवान को मजा आता है। शुक्राचार्य इस बात को नहीं समझ पाए, श्राप दे दिए। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, आप भी पंडित जी हो, भृगुवंशी हो, आपका बात सही होना चाहिए ना। तो बलि कहे कि भाई देखो तेरे गुरु जी ने श्राप दिया है, अब तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसा लोक क्रिएट करूंगा, ऐसा लोक कि इंद्र के लोक से भी कहीं बड़ा होगा। और उतना ही नहीं, तू हमारा सदैव वहां दर्शन करते रहोगे। उतना ही नहीं, यहां पर तो आक्रमण हो जाती है, वहां कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो मान लो कि अंदर वाले झगड़ा करेंगे, उतना ही नहीं, आपस में कोई झगड़ा भी नहीं करेगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, सब अपना सेवा करते रहेंगे और मैं देखते रहूंगा। ये भगवान का कृपा है। बलि के सिर पर पैर रख देना और उनको सुतल लोक में भेज देना, ये भगवान का कृपा है, भगवान का अत्याचार नहीं है, भगवान का कृपा है। हनुमान जी, हाँ जरूर बैठिए। अरे पहले माइक की राइट बोल दो, हाँ बोल दीजिए।
कमेंट, कमेंट,
नो कमेंट, क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देन कमेंट। अरे माइक आ रहा है।
हरे कृष्णा, जैसे आप बोले कि भक्त की इच्छा होना नहीं चाहिए वैकुंठ जाने को, गोलोक धाम जाने को, तो प्रभुपाद जी पर्पट में भागवत में गीता में हमें लिखे कि ये जेंटलमैन व्यक्ति की जगह नहीं है, इधर यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। अगर हम अपने घर में जाने को इच्छा होना चाहिए ना, हमारे घर तो यहाँ कहीं नहीं, तो हमारे इच्छा होने से हम काम करेंगे ना, इच्छा नहीं होगा तो हम इधर लटक जाएंगे। फिर इच्छा होना चाहिए कि हम भगवत धाम जाए।
100% का बात कर दिए, लेकिन मैं कहता हूं कि इस जगह को भी आप वैकुंठ बना सकते हो। ना हम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय पिच मदभक्त जत्र गायन्ति तस्य सामी नारद। इस जगह को वैकुंठ बनाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। क्या समझते हो मंदिर वैकुंठ नहीं है?
लेकिन यहाँ पे जब जन्म आना मरना संसार चक्र है ना, ये जब तक है तब तक इसके बाद जाने की इच्छा होना चाहिए।
प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हो, इस देह में रह करके भी इस देह से अलग हो सकते हो। जैसे नारियल, नारियल अपने सेल में रहता है फिर भी सेल को छोड़ देता है, गुरु गुरु आवाज आता है ना, तो देह में रह करके भी देह से अलग। क्या समझते हो विष्णु पितामह हमको एक कांटा चुभे, नानी याद आती है, विष्णु पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, उन्हें दुख नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि शरीर को छोड़ चुके थे। तो शरीर में रहते हुए भी तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना महान है, इतना महान है, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कहीं भी रहे उनके लिए वैकुंठ है। कहा जाता है ना वो ढेंकी होता है ना, ढेंकी समझते हो ना, ढेंकी धान कूटने वाला, वो स्वर्ग में जाएगा तो धान ही कूटेगा और कुछ काम नहीं करेगा। वैसे ही भगवान के भक्त कहीं भी जाएंगे भगवान का सेवा करेंगे, चाहे गोलोक वृंदावन हो, चाहे यहां हो, चाहे नरक में हो, कहीं जाएंगे कृष्ण का सेवा करेंगे। ठीक है, और कुछ बताना है तो बता दो आप भाई, अभी गुरु जी हो बताओ। ओके, अदरवाइज हनुमान प्रभु के पास माइक जाएगा। कोई और क्वेश्चन है नहीं तो हनुमान प्रभु के पास दे माइक, कमेंट है हनुमान का। देखो इसके जीव पर पानी नहीं आ रहा है, पेट के अंदर चूहा कूद रहा है इसके।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बताते हम यही भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन ये जो शरीर मिला है,
क्या क्या
ये जो शरीर मिला है, ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भक्ति करने के लेना ही पड़ेगा ना, दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा ना। जब दूसरा शरीर लेंगे तब गर्भ में तो हमको तकलीफ हो जाएगी ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तो तकलीफ होगी ना।
प्रश्न क्या आपका?
प्रश्न मेरा है, आप जो बताते हैं हम वैकुंठ या गोलोकधाम नहीं जाना चाहेंगे, हम यहीं पे भगवान की भक्ति करेंगे, हम भक्ति चाहेंगे भगवान की।
देखो ये सब भगवान पर छोड़ दो, भगवान चाहेंगे आपका जरूरत है वैकुंठ में उबल जाएंगे, चाहेंगे आपको नरक में आओ नरक में जाओ, तैयार हो प्रचार करने के लिए?
तैयार तो है, लेकिन जब ये शरीर जब मिलेगा तो शरीर ये तो दुखा ले।
वही मैं कह रहा हूँ कि शरीर से अलग हो जाओ ना।
नहीं नहीं प्रभु जी,
शरीर से अलग हो जाओ, अब देखना पड़ेगा कि मृत्यु के रूप में अलग हो गए कि मुक्ति के रूप में। शरीर से अलग होने का दो तरीका है, एक कहलाता है मृत्यु और दूसरा कहलाता है मुक्ति। मृत्यु उसकी होती है जो शरीर में लगाव रखते हैं, मुक्ति उसकी होती है जो शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छोड़ करके जीना सीखो वो कहलाती है मुक्ति। तो मुक्त मन करके जियो, और मुक्ति का साधन है भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। शरीर में फंसे रहोगे तो मृत्यु होगी, आज नहीं तो कल, पता नहीं है। मृत्यु की पता नहीं है लेकिन मुक्ति की पता है। यस हनुमान जी, अब अपना परपट दे दीजिए।
हरे कृष्णा। तो वाली और सुग्रीव का आपस में पहले बहुत प्रेम था।
किनका?
वाली और सुग्रीव।
हाँ,
दोनों भाई थे तो आपस में बहुत प्रेम था, बाद में किसी मतभेद के कारण उनमें आपस में झगड़ा हुआ। तो वाली जो है वो सुग्रीव का पिटाई करता था, उसे जान से नहीं मारता था, उसका उसके प्रति स्नेह प्रेम था। लेकिन सुग्रीव ने भगवान श्री राम का मदद लेके उसका वध करवाया। फिर बाद में जब भाई मर गया तो सुग्रीव फूट फूट के रो रहा था, बोला अब बहुत खराब हो गया। तो भगवान श्री राम वाले को पूछा कि मैं आपको जीवित कर सकता हूँ, बांध निकाल कर वापस जीवन दे सकता है? तो वाले बोला फिर जीने की इच्छा नहीं है, बाद में ऐसा मृत्यु कब आएगा जब आप साक्षात हमारे सामने है? और बोला सुग्रीव तुम मेरा सबसे अच्छा सुहृद है, जिससे आप प्रभु राम मुझे मिलाए और उनके साक्षात रहते हुए मैं शरीर छोड़ रहा हूं। तो जो प्रभु के पास ले जाता है वो हमारा सबसे अच्छा सुहृद है।
बहुत सुंदर बात हनुमान प्रभु ने कहा। तो इसका मतलब कि कृष्ण कॉन्शियसनेस बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब तारा समझा रही थी तो बाली यही कह रहे तो पगली तो नहीं जानती है, मैं जाऊंगा थोड़ा मारपीट कर छोड़ दूंगा, मेरा भाई है ना, थोड़े मरने वाला हूँ मैं, मारूंगा नहीं, उसका हाथ पर तोड़ दूंगा, भगा दूंगा, इतना ही करूंगा। हनुमान जी वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं,
आखिर हाय हनुमान जी ना। वहीं पर थे भाई, ये भी थे, ये भी भागे रखे थे। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।